الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وتسليما كثيرا كثيرا. حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان کا آٹھواں روزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرما رکھا ہے کہ ہم اس دور میں جو 14 سال بعد کا دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے کے بعد سے 1400 سال سے زیادہ مدت ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت جو اسلام کی صورت میں ہم کو ملی ہے وہ قائم ہے اور الحمدللہ اس کو لوگ سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کو انسان کی ضرورت کے مطابق بنایا ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہوں, کیونکہ انسان کو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے بنایا ہے, اس زمین کی مٹی سے بنایا ہے. تو انسان کی اصل یہ مٹی ہے اور مٹی جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ اور چیزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھی جاتی ہے, حقیر پیروں سے روندی جاتی ہے اور جو گھٹیا سے گھٹیا کام ہوتے ہیں وہ مٹی سے لیے جاتے ہیں. مٹی کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی عزت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ایسی چیز جس کی کوئی عزت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, اس سے ایسی چیز پیدا فرما دیتا ہے کہ جو اگر ہمت کرے اور اپنے رب پر بھروسہ کرے تو وہ بہت بلندی تک جا سکتا ہے اور بہت پاکیزہ اور بہت معزز بن سکتا ہے, جس کو سورہ تین میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کو ہم نے بہترین اس کا مزاج اور اس کا جو اس کی جو طبیعت ہے وہ بہت ہی غیر معمولی رکھی ہے, بڑی صلاحیتیں اس میں رکھی ہیں. اگر ان صلاحیتوں کو وہ استعمال کرے گا تو بہت بلندی تک جا سکتا ہے اور نہیں کرے گا تو اس مٹی کا حقیر رہے گا. اور اس کو آپ دیکھیں گے تاریخ میں اس کی دونوں کی مثالیں ہیں کہ ایک طرف تو انسان کی انسان نے جب ترقی کی, اللہ نے اس کو ترقی کی توفیق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج حاصل ہوئی. آپ انسان تھے, مٹی سے بنے تھے, لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ اپنے عرش کے قریب تک بلا لیا ان کو, جہاں فرشتے بھی نہیں جا پاتے, ہر جبریل کی پہنچ سے آگے پہنچ گئے. کہاں مٹی اور کہاں وہ مقام, لیکن اس کی وجہ کے بغیر نہیں کہ اپنی ان صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرے. اسی کے ذکر اس نے سورہ تین میں کیا ہے, فرمایا کہ ہم نے بہترین مزاج بہترین صلاحیتوں کا انسان بنایا مٹی سے, اور اس کے بعد بنا کر اس کو مٹی کی طرف واپس کر دیا کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم اس سے اٹھو یا نہ اٹھو. اٹھو گے تو بلندیوں تک جاؤ گے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاؤ گے, جو نورانی مخلوق ہے, اور نہیں تو مٹی کا گوبر اور مٹی کے طرح رہو گے. اور انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہیں, برابر ملتی ہیں, قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں کہ انسان جب نیچے گھٹا ہے, مٹی کی طرف گیا ہے, اپنے کو نہیں اٹھایا ہے, اس نے مٹی سے तो गोबर और पखाने की हैसियत में पहुंच गया है। क्या मतलब हुआ उसका? यानी उससे लोग घिन खाते हैं, उससे नफरत करते हैं और उसको अंदर से उसको बद्दुआएं देते हैं। इंसान ऐसा भी होता है। और इंसान जब तरक्की करता है, अपने को बनाता है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बढ़ता है आगे, तो दुनिया अशश करती है और तारीफों के फूल बांधती है और उसके पीछे दौड़ती है दुनिया। वो दुनिया से भागता है और दुनिया उसके पीछे दौड़ती है। लेकिन उन सलाहियतों की बिना पर जो अल्लाह ने इस मिट्टी के जर्रे में रख दी है, हकीर तरीन चीज को बहुत मुआज़्ज़ज़ तरीन बनाने का अल्लाह ताला ने नुस्खा दे दिया है। वो नुस्खा क्या है? अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और उसको राजी करने की कोशिश। वो कादिर मुतलक है, खालिक है, हर चीज उसके अख्तियार में है, उसके कब्जे में है। दिन को रात बना दे, रात को दिन बना दे, सूरज को चाहे मगरिब से निकाल दे चाहे शिमाल से निकाल दे, हर चीज उसके अख्तियार में है। उस पर किसी की पाबंदी नहीं है, कोई उससे बड़ा नहीं। उसको राजी कर लेने के बाद आदमी जाहिर है बड़ी से बड़ी चीज उसको हासिल हो सकती है। उसके अख्तियार में सब कुछ है, वो बड़ी से बड़ी चीज दे सकता है। और इसकी मिसालें अल्लाह ताला ने दी कि इंसानों में इंतखाब उसने जो किया, जिन लोगों का जो नबी कहलाए, वो वही लोग थे कि जिन्होंने अपनी सलाहियतों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सही इस्तेमाल किया। अंबिया अलैहिस्सलाम क्या थे? आम इंसान नहीं थे, थे इंसान, लेकिन अपनी उन सलाहियतों से जो अल्लाह ने उनको दी थी इसी काम के लिए, ज़्यादा उन्होंने काम लिया और अल्लाह ताला के मंजूर नजर हो गए और फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे पसंद आए अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला ने कहा इन्नी जाइलु कल्लिना से इमामा, मैं तुमको लोगों का इमाम बना रहा हूँ, इमाम मुक्तदा, सारी इंसानियत का मुक्तदा। और हुजूर हसन से कहा गया कि तुम इब्राहिम की नकल करो, मतलब इब्राहिम अमीर से इब्राहिम हनीफा। क्यों? यूं ही नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रजा के लिए वो काम, वो कुर्बानियाँ दी, वो काम किया जिसकी मिसाल इंसानियत में आसान नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको तीन तरीके से आजमाया, इम्तहान लिया कि उनमें अब्दियत कितनी है, अपने रब की इताअत और अपने रब के हुक्म पर फिदा हो जाने की कितनी सलाहियत। और तीनों इम्तहान में और इम्तहान लिए होंगे, लेकिन ज़ाहिरियत इम्तहान तीनों इम्तहान में वो कामयाब रहे। पहला इम्तहान तो ये था कि अपनी कौम से लड़कर और आग में डाले जाने के बावजूद वो अल्लाह की इताअत के लिए अपनी बात कहते रहे और किसी तरह उन्होंने मुफामत नहीं की। हत्ता के वतन, घर बार, अपना इज्जा और ज्यादा सब छोड़ कर जाना पड़ा उनको। आग में डाले गए, तैयार हो गए आग में जाने के लिए, कामयाब रहे। फिर उनके जब बहुत बुढ़ापे में औलाद जो हुई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे थे बिल्कुल, उनकी माँ को उनको कहा ले जाकर सहरा में छोड़ा, ऐसी जगह जहाँ ना पानी है, ना खाना है, ना कोई इंसान है, चट्टियल बैठा, कोई वहाँ रहने वाला नहीं, कोई आदम आजाद नहीं, अकेले माँ और छोटा बच्चा, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पियेंगे। पूछा उनकी मीन है कि तो आप हमको किस पर छोड़ के जा रहे हैं यहाँ? अल्लाह के लिए छोड़ के जा रहे हैं। क्या होगा इससे हमें बहस नहीं, हमें तो हुक्म के सामने जाइए। किसको छोड़ के आए? अपने उस बेटे को जो बड़ी तमन्नाओं के बाद पैदा हुआ था बुढ़ापे में, जितना अजीज रहा होगा, और वो बीवी की जिससे वो बच्चा पैदा हुआ, युवा के जाकर कुर्बान करके चले आए, कामयाब रहे। फिर तीसरी कुर्बानी उन्होंने दी, अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने जब बेटा बड़ा हो गया और खूब काम का हो गया और बहुत माँ बाप का बहुत खिदमतगार हो गया और सब माँ बाप देख खुश होते, इनको ज़बह कर दो हमारे नाम पर, ज़बह कर दो, हाजिर ले जाकर लेटा कर छुरी चले। वो तो अल्लाह ताला को इम्तहान लेना था, ज़बह करना नहीं था, इम्तहान लेना था। अरे वो लेटा कर छुरी चलाई तो जाहिर इम्तहान में कामयाब रहे। अल्लाह ताला ने उनको इन्नी जाहिरों के लिए ना से इमामा, सारे इंसानों का इमाम बना दिया और कहा कि हम तुमको और तुम्हारी औलाद को हम नवाज देंगे। फिर अल्लाह ने नवाजा कि उनकी औलाद में बहुत कसरत से नबी हुए, बादशाह हुए, बड़े बड़े बुजुर्ग हुए उनकी उनके उनकी नस्ल में। लेकिन बाद में उनकी वह एक नस्ल जो बनी इसराइल कहलाती है, वो फिर वो उसने गड़बड़ शुरू किया। अल्लाह तो है कि इससे काम नहीं चलता कौन किसकी औलाद है, जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा, जो बुरा काम करेगा बुरा। ना रंग रोगन की बात है, ना नस्ल की बात है, ना वतन की बात है, जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा बुरा है, नबी के औलाद हो किसी के औलाद हो। अल्लाह ने दिखाया भी कि हसन अलैहिस्सलाम के बेटे को डूबने दिया और तुम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ भी किया कि बेटा हमारा रह गई, ऐसी बात मत कहो, कैसे तुम्हारा बेटा होगा जो तुम्हारी बात नहीं मानी, तो बेटा कब हुआ? तो सारा मसला इसका है कि अल्लाह ताला ने हमको मिट्टी से बनाया है, हकीर तरीन चीन से बनाया है, लेकिन ऐसी खसूसियात रख दी हैं कि अगर उनको सही इस्तेमाल करें तो बहुत बुलंदी तक जाएंगे। और अल्लाह ताला ये चाहता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके औलाद को ज़मीन पर, उनको ज़मीन में भेजा एक इम्तहान के लिए कि यहाँ ज़मीन में तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी पसंद की चीज़ें कसरत से होंगी, हर तरह का सामान मौजूद है तुम्हारे लुत्फ का, तुम्हारे फ़ायदे का, तुम्हारे मज़े का। एक तरफ वो सामान है मज़े का, लुत्फ का और लज्जत का, दूसरी तरफ अल्लाह ताला के हुक्म की, अल्लाह ताला की फरमानबरदारी है। और दोनों जब टकराएंगे तुम किसको लोगे, अल्लाह ताला की फरमानबरदारी को लोगे या अपने नफ्स के ख्वाहिश को लोगे? यही इम्तहान कि जी कुछ चाह रहा है लेकिन हुक्म कुछ है। हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं या अपने जी के चाहने पर अमल करते हैं, अल्लाह ताला ही देखता है कि तुम अपनी ख्वाहिश को हमारे खातिर दबा सकते हो नहीं संभाल सकते, अपनी पसंद को हमारी पसंद के आगे गिरा सकते हो नहीं गिरा सकते। और तुम्हारी पसंद की चीज़ें आप बहुत हमने रख दी हैं ये देखने के लिए कि एक तरफ तो तुम्हारी पसंद है और एक तरफ हमारा हुक्म है, इधर जाते हो या इधर जाते हो। और फिर हम इसका पूरा सही सही हिसाब कर देंगे, जैसा करोगे उसी के मुताबिक हम तुम्हें नवाज देंगे। इसीलिए अल्लाह ने दो जिंदगियां रखी हैं, एक दुनिया की जिंदगी और एक आखिरत की जिंदगी। असल जिंदगी अल्लाह ने आखिरत की बनाई है, वहाँ हमेशा रहना होगा और वहाँ दोनों चीज़ें हैं, आग की दुनिया भी है और बागात की दुनिया भी है। और उसी हिसाब से मामला होगा, अल्लाह की ज़िम्मेदारी के साथ बागात की ज़िंदगी और शैतान और नफ्स की बंदगी के साथ वो वो दुनिया है आग वाली, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन इंसान जितना करना चाहिए, अल्लाह का जितना एहसान है, उस एहसान के लिहाज से कितनी ही इबादत करे, कितनी ही इताअत करे, उस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। इसलिए कि पैदाइश से पहले से लेकर और आदमी के बड़े होने तक हर जगह अल्लाह ताला के फजल से वो आगे बढ़ा है, और वो खुद कुछ नहीं कर सकता था। माँ के पेट से लेकर अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता हुआ, उसको तरक्की देता हुआ, उसने अल्लाह ने वहाँ तक पहुँचाया कि अपने हाथ पैर से काम करने लगा और बहुत उसको ताकत हासिल हो गई। तो अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करेगा? हम मामूली एहसान पर तो शुक्र अदा कर लेते हैं, लेकिन इतने बड़े एहसान कहाँ शुक्र अदा कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कोशिश को वो कदर किया, कोशिश तुम कितनी करते हो। अगर तुम अपनी ताकत के मुताबिक हमारी ताबेदारी कर लोगे तो हम तुमको बागात वाली जिंदगी अता करेंगे, जहाँ तुम्हें कभी न गम होगा, न परेशानी होगी, न कोई तकलीफ होगी, वहाँ बुढ़ापा भी नहीं आएगा। और वरना फिर हम सजा देंगे कि हमने इतने एहसान किए, उसके बाद तुमने हमारी बातों को ठुकरा दिया और अमल नहीं किया। क्योंकि इंसान उस शुक्र अदा पूरी तरह शुक्र अदा नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ने कहा कि हम इंसाफ का मामला करेंगे। ये नहीं है कि किसी को नवाज दिया और किसी को यूं ही सजा दे दी, नहीं, उसके करने को देखकर करेंगे, उसके अमल को देखकर करेंगे। अल्लाह ताला चाहता यह है कि इंसान बागात वाली जिंदगी में जाए और कामयाब रहे। अल्लाह ताला की जात बड़ी रहीम है, करीम है, वो चाहता है कि इंसान आखिरत की जिंदगी में बागात वाली जिंदगी उसको मिले, जहन्नम वाली जिंदगी ना मिले। लेकिन कैसे हो ये अल्लाह ताला देखता है। अगर कोशिश की है बंदे ने तो उस कोशिश पर अल्लाह उसको नवाज देगा, लेकिन कैसे नवाजेगा? अगर कोशिश को नवाजा, एक शख्स ने कोशिश की लेकिन अमल नहीं कर सका, दूसरे ने अमल किया, तो दोनों बराबर कैसे हुए? कैसे इंसाफ होगा? उसके लिए अल्लाह ताला ने ये किया कि बाद अमाल को बहुत ज्यादा अजर वाला बना दिया, ताकि उसकी तलाफी हो सके। उन्हीं अमाल में एक तो हज है और दूसरे ये आपका रमजान है। मक्के मुकर्रमा में एक अमल 1,00,000 अमल के बराबर हो जाता है, और रमजान में एक अमल 70 अमल के बराबर हो जाता है। तो थोड़ी चीज से भी अल्लाह ताला वो फायदा दे देता है जो बड़ी चीज का है। और चूंकि ये अल्लाह ने सबके लिए ये उसूल बनाया है, ये नहीं है कि एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं है, कि अगर इंसान कोशिश करना चाहता है तो उसके लिए अल्लाह ने ये तरकीबें रख दी हैं कि तुम कर नहीं सकते पूरी तरह, तो इन तदबीरों से तुम काम चला सकते हो। कि एक नमाज पढ़ी रोजे में रमजान में, वो 70 नमाज बन गई अजर के एतबार से। मक्के में एक अच्छा अमल किया तो वो 70 अमल के बराबर हो गया। इस तरीके से अल्लाह ताला इंसानों के लिए हल निकाल रहा है अपने नेक बंदों के लिए, कि बंदा नेक है, कोशिश कर रहा है, उसकी तमन्ना है, बहुत चाहता है, तो अल्लाह ताला दी कि भाई इतना ये तेरा तालिब है, इतना कोशिश कर रहा है, इसको पार कर दिया जाए, तो उसके लिए अल्लाह ने ये तदबीरें रख दी हैं। इस तरह लैलतुल क़द्र है, ये शब-ए-क़द्र में 1,000 महीनों की रातों की हैसियत उसको दे दी अल्लाह ने, यानी 1,000 रातों में जितना अमल होता है वो एक रात का अमल उसमें उसके बराबर हो जाएगा। और इसका जिक्र है कि अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि इंसानों की उम्रें कम होती हैं और होशियारों का अमल कितनी कोशिश करें उतना नहीं हो पाता, इसलिए उसकी तलाफी इस तरीके से हो सकती है कि आदमी इस तरीके से नेक अमल बटोर सकता है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम और उसका फजल है कि उसने हमको ऐसे मौके अता फरमाए हैं। लेकिन मसला वही है कि उन मौके से हम फायदा उठाएं, और बुरी बात यह है कि उन मौके को हम सिर्फ नज़रअंदाज न करें बल्कि उसमें उल्टा काम करें। जिस तरह इन मौके पर नेकी बहुत बढ़ जाती है तो गुनाह भी बहुत बढ़ जाता है। इन मौके आदमी अगर अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, तो वो ही बहुत ज़्यादा फिर सज़ा की बुनियाद बन जाता है। इसलिए ज़रूरत होती है आज की हम इससे पूरा फ़ायदा उठाएं, और अल्लाह ने हमारे लिए जो नया ये इंतज़ाम किया है इस इंतज़ाम से कि हम कद्र करें। तीन अशरे होते हैं रमज़ान में, पहला अशरा अल्लाह ने रहमत का रखा है और दूसरा वखलत का रखा है, तीसरा इस नार का जहन्नम से बचने का। पहला अशरा रहमत का है, वो लोग जो नेक हैं नेकी काम करते हैं उनको आसानी के साथ उनकी नेकियां बढ़ जाएंगी, उनका दर्जा बढ़ जाएगा। रमज़ान आते ही वो जो लगेंगे रमज़ान में तो उनका बहुत तरक्की करेंगे, उनको रहमत हासिल होगी। लेकिन जो लोग कुछ गुनहगार हैं और इतनी ज़्यादा नेकियां नहीं की हैं उन्होंने, तो उनको एक अशरे के बाद दूसरे अशरे में अल्लाह ताला उनके मगफरत फरमाएगा। अगर उन्होंने कोशिश की और अमल किया, अल्लाह ताला की मगफरत की कोशिश की, तो मगफरत हासिल होगी। और तीसरे अशरे में यह है कि कोई ऐसे गुनहगार के जो पहले और दूसरे अशरे में भी अपने को कामयाब नहीं कर सके, ज़्यादा अमल नहीं कर सके, उनके लिए फैसला है कम से कम आग से निजात मिल जाए उनको। इसलिए कि दो अशरों में उनको जो कुछ उन्होंने अमल किया है वो मिलाकर फिर वो इत्मीनान यानी आग से निजात मिल जाए। बहुत बड़ी बात है कि जहन्नम से आदमी को निजात मिल जाए। इसी के लिए सारी कोशिश है कि अल्लाह ताला हमको वहाँ बेहतर से बेहतर जगह अता फरमाए, और कम से कम ये कि हमें बुरी जगह से बचाए, जहन्नम से बचाए। तो इस महीने को हमें बहुत कदर की निगाह से देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इससे के जरिए से हम जितना कमा सकें, अल्लाह की रजा जितनी हासिल कर सकें, और अपने गुनाहों को जितना माफ़ करा सकें अल्लाह ताला से, उसमें हम कोताही न करें, और उसके लिए हमें अपने ऊपर पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी। इसमें गीबत करना, झूठ बोलना, ज़बान की जो खराबियाँ हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी करार दिया गया है। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि बाद लोगों के नज़दीक तो उसका रोज़ा होता ही नहीं जो ज़बान की इन खराबियों में मुबतला होता है, जिसमें हम लोग आदी हैं। बैठेंगे गप करेंगे, गप करने में गीबत भी होगी, दूसरे की बुराई भी होगी, और अपने ख्वाहिश नफ्स की बातें होंगी, से कितना हम अपने को नुकसान पहुँचा लेते हैं। लेकिन रोज़े में अगर ये करेगा तो रोज़ा उसका ज़ाय हो सकता है। इसी तरह ये है कि मुसलमान भाई हैं, भाई के साथ भाई जैसा सलूक करना चाहिए, हर मुसलमान को भाई समझना चाहिए, और मोहब्बत के साथ आपस में हमदर्दी के साथ रहना चाहिए। अगर तफरीका हो जाता है दो मुसलमानों में और दोनों में इख्तलाफ हो जाता है और बात करना छोड़ देते हैं एक दूसरे से, तो मना कि तीन रोज़ से ज़्यादा ये कैफियत नहीं रहनी चाहिए। तीन रोज़ के अंदर बात को ख़त्म कर लेना चाहिए। और ये रमज़ान इसका बेहतरीन मौका है कि हमसे जो ऐसी गलतियाँ और गुनाह हुए हैं उनकी माफ़ी हम रमज़ान में अल्लाह ताला से हासिल कर लें। अगर किसी का हक मारा है तो उसका हक अदा कर दें, किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो उसे जाकर उसे माफ करा लें कि भाई हमसे आपको तकलीफ पहुंची है, आप माफ कर दीजिए, ये अल्लाह ने रमजान हमको दिया है, ऐसी मौका है कि आप हमको माफ कर दीजिए ताकि हमारे सर से वो गुनाह उतर जाए कि मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई। ये कि हमारी जिंदगी में ऐसा बहुत होता है, आपस के अख्तलाफात में एक दूसरे की हकतलफी होती है, एक दूसरे की बुराई होती है और दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं और ऐसे हैं, तो इसमें आपस के जो लड़ाइयाँ हैं और आपस में जो दूसरे के साथ ज्यादतियाँ हैं उनको माफ़ करा देने का ये बेहतरीन मौका है। और इसकी तरगीब दी गई है कि इसमें आदमी को अपने से माफ़ कराना चाहिए ताकि रमज़ान से जब वो निकले तो पाक व साफ होकर और नेक हालत में निकले, ऐसा ना हो कि गुनाहों के साथ दाखिल हुआ था और गुनाहों के साथ निकल रहा है, और ये बेहतरीन मौका जो अल्लाह ने दिया है उसको ज़ाय कर दिया, उससे फ़ायदा नहीं उठाया। अल्लाह ताला मुझको भी तौफीक दे और आप सबको तौफीक दे कि हम इस महीने से सही तौर पर फ़ायदा उठाएं और जो हमसे जो कुछ इससे पहलफलफियाँ या ज्यादतियाँ या अदावतें हुई हैं उन सब का तस्सिया करा लें। अगर किसी का हक मारा है तो उसका हक अदा कर दे, किसी को ईजा पहुंचाई है तो उसे माफ़ी हासिल कर ले, तो हम सही तौर पर इस महीने से हम फायदा उठाएंगे और हमारे लिए ये एक नेमत बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये नेमत नहीं बनेगा बल्कि ये और जहमत बन जाएगा और मुसीबत बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इस माह मुबारक से पूरा फायदा उठाएं। आखिर रामना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और देखिए इस रमज़ान और जो लोग जिनको जो हमारे भाई हैं और दुनिया से रुख्सत हुए हैं उनकी मगफरत की भी हमें दुआ करनी चाहिए। और आज एक वाक़ ये साजिद खान साहब जिन्होंने ये काम अच्छा काम किया कि इज्जत डलवाया, उनकी वालदा बीमार चल रही थी, आज सुबह उनका इंतकाल हो गया, उनकी मगफरत के लिए भी दुआ करें। और जो भी ताल्लुक वालों में जिनका इंतकाल हुआ है उन सबकी मगफरत की दुआ करें और अल्लाह ताला से अपने लिए नेकी की और तरक्की देखियों में तरक्की करने की दुआ करें। सल्लल्लाहु ताला सैयदना मुहम्मदिन अलैहि वसल्लम बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا وفقنا لما تحبه وترضاه وإلى آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.